स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। प्रसाद नहीं लिया? अच्छा, कुकी मत, प्रसाद तो लिए ना? हाँ, गलती है क्या प्रिंटिंग में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तम श्लोके
भगवद्युत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 20वां अध्याय। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। श्लोक संख्या 15। एवं
एवं
द्विजा अग्र्या
अग्र्या
अनुमता
अनुमता
अनुवृत्ता
अनुवृत्ता
धर्मा
धर्मा
प्रधानः
प्रधानः
अन्यतमः
अन्यतमः
अविता
अविता
अस्याः
अस्याः
ह्रस्वेन
ह्रस्वेन
कालेन
कालेन
गृह
गृह
उपायतान
उपायतान
द्रष्टासि
द्रष्टासि
सिद्धान
सिद्धान
अनुरक्ता
अनुरक्ता
लोकः
लोकः।
एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्ता
एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्ता
धर्मप्रधानोऽन्यतमो वितास्याः
धर्मप्रधानोऽन्यतमो वितास्याः
ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान्
ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान्
द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः
द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः
एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्ता
एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्ता
धर्मप्रधानो धर्मप्रधानोऽन्यतमो वितास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान्
ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान्
द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः
द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्ता धर्मप्रधानोऽन्यतमो वितास्याः
ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान्
ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान्
द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः
द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः
एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्ता
एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्ता
धर्मप्रधानोऽन्यतमो वितास्याः
धर्मप्रधानोऽन्यतमो वितास्याः
ह्रस्वेन कालेन गृहोपयाता
ह्रस्वेन कालेन गृहोपयाता
द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः
द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः
एवं
द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्ता
धर्मप्रधानोऽन्यतमो वितास्याः
ह्रस्वेन कालेन गृहोपयाता द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः
एवं
एवं
इस प्रकार
इस प्रकार
द्विज
द्विज
ब्राह्मणों का
ब्राह्मणों का
अग्र्य
अग्र्य
अग्रणी द्वारा
अग्रणी द्वारा
अनुमत
अनुमत
स्वीकृत
स्वीकृत
अनुवृत्त
अनुवृत्त
गुरु परंपरा से प्राप्त
गुरु परंपरा से प्राप्त
धर्म
धर्म
धार्मिक सिद्धांत
धार्मिक सिद्धांत
प्रधानः
प्रधानः
प्रमुख
प्रमुख
अन्यतमः
अन्यतमः
अनासक्त
अनासक्त
अविता रक्षत् अस्याः पृथ्वीका अपने घर अपने घर उपायतान् उपयातान् स्वतः आया हुआ दृष्टासि
तुम देखोगे
सिद्धान् सिद्ध पुरुष
अनुरक्त लोकः
प्रजा का प्रिय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों में से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी और तुमसे स्नेह रखेगी और तब तुम्हें शीघ्र ही सनक आदि सनातन, सनंदन, सनत कुमार चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। तो तात्पर्य लंबा है, पूरा पढ़ें तात्पर्य कि आधा आज आधा कल कैसे करना है। तात्पर्य: भगवान विष्णु ने राजा पृथु को सलाह दी कि हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करे, तभी मनुष्यों का इस संसार में चाहे वे जिस स्थिति में रहें मृत्यु के पश्चात मोक्ष निश्चित है। किंतु इस युग में वर्णाश्रम धर्म की पद्धति अस्त व्यस्त हो चुकी है, अतः इन नियमों का कड़ाई से पालन कर पाना कठिन है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय कृष्ण चेतना का विकास करना है। जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का पालन विविध पुरुषों द्वारा विभिन्न पदों पर रहते हुए किया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण चेतना के सिद्धांतों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसार के प्रत्येक भाग में किया जाना चाहिए। यहाँ पर उल्लेख करने का विशेष अभिप्राय है कि मनुष्य को पराशर तथा मनु जैसे द्विजाग्रयों अर्थात अग्रणी ब्राह्मणों का अनुसरण करना चाहिए। इन ऋषियों ने पहले ही आदेश दे रखे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का किस प्रकार पालन किया जाए। इसी प्रकार सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी ने भगवान के शुद्ध भक्तों भक्त बनने के नियम दे रखे हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि परंपरागत आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण किया जाए, जिन्होंने परंपरा से गुरु से शिष्य तक पहुँचे ज्ञान को प्राप्त किया है। इस प्रकार भौतिक जीवन यापन करते हुए तथा अपना पद छोड़े बिना भौतिक कलमश के बंधन से छूटा जा सकता है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपना घर बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसे मात्र परम स्रोत परंपरा का श्रवण करके नियमों को जीवन में व्यवहारित करना होता है। इस प्रकार जीवन की परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह शरीर में नहीं वरन चेतना में होता है। दुर्भाग्यवश इस युग में लोग शरीर के प्रति लगाव रखते हैं, आत्मा के प्रति नहीं। उन्होंने आत्मा नहीं वरन शरीर से संबंध अनेक वादों का आविष्कार कर लिया है। और भी तात्पर्य है, वो कल सुबह जो भी प्रवचन देंगे वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पशु और मनुष्य में मुख्यतः अंतर क्या है? वैसे कई अंतर बताए जा सकते हैं, परंतु मनुष्यों की विशेष आवश्यकता या गुण ये होने चाहिए कि मनुष्य किसी निर्धारित बदलाए हुए पद्धति के अनुसार अपने जीवन को जीता है, किसी ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। वैसे जानवर, कीड़े, चींटियां, मधुमक्खी, वो भी एक बदलाए हुए पथ पर चलते हैं, बल्कि मनुष्यों से ज़्यादा, परंतु उन्हें कोई ऊंचे उद्देश्य की कल्पना नहीं होती है। जैसे अभी हम लोग मधुमक्खियों को पालन कर रहे हैं, हाँ, तो मधुमक्खियों का जीवन कैसे होता है आप में से कोई बता सकते हैं? मधुमक्खी का जो समाज है वो कैसे चलता है, संक्षेप में कोई बता सकते हैं? कौन देखभाल करते हैं मधुमक्खियों? संक्षेप में मधुमक्खी समाज का वर्णन करना।
मधुमक्खी समाज में
थोड़ा जोर से सब
मधुमक्खी समाज में
मधुमक्खियों को भी सुनना चाहिए।
मधुमक्खी समाज में अलग अलग श्रेणियां हैं, तो मूलतः एक रानी होती है और कुछ पुरुष होते हैं जो संतान उत्पत्ति करते हैं और कुछ
कर्मचारी
होते हैं। तो सभी लोग रानी के लिए कार्य करते हैं क्योंकि रानी ही है जो उनकी पीढ़ियों को बढ़ाती है। तो कर्मचारियों का कर्तव्य है कि कर्मचारियों में कुछ लोग होते हैं वो सर्वे करते हैं कहाँ कहाँ फूल है, वहाँ जाके देख के आके इनको संदेश देते हैं कि ये जगह में फूल है। तो कर्मचारी सभी लोग वहाँ वहाँ जाकर वो मकरंद को इकट्ठा करके ले आते हैं और घर बनाकर उसमें भरते हैं। तो ये सभी कार्य होता है एक सुगंध के द्वारा, क्योंकि वो एक दूसरे को पहचानते हैं सुगंध के द्वारा। तो जब रानी अंडे देती है तो अंडे में से कुछ कर्मचारी बनते हैं, कुछ पुरुष बनते हैं और कोई रानी होती है। और जैसे ही नया रानी की उत्पत्ति होती है फिर कुछ लोग मिलकर एक दूसरा झुंड बनाकर चले जाते हैं। तो यहाँ भी एक व्यवस्थापन है और केवल हम सुनते हैं जब मधुमक्खी काटा तो केवल कर्मचारी ही काटते हैं, पुरुष और रानी कभी काटते नहीं, तो स्वयं की रक्षा के लिए वो काटते हैं, तो ये उनका
तुम्बा चेन्नगिदे। तो हमने देखा कि मधुमक्खी समाज में कितनी व्यवस्था है, हर एक के अपने अपने कार्य निर्धारित होते हैं, किसको क्या कार्य करना है और किसको किस कार्य करने की अनुमति नहीं है, क्या क्षमता नहीं है। जो बाहर जाके मकरंद ले आएंगे फूलों से वो अलग है, कि जो रानी से प्रजा उत्पत्ति कराएंगे उनके वो अलग है, रानी का कार्य अलग है। एक व्यक्ति दूसरे का कार्य करने नहीं जाता, जैसे हमारे शिवाजी प्रभु सेना में थे ना, सेना में तो सेना में निर्धारित कर्तव्य होते हैं कि नहीं, किसको तोप चलाना होता है, वो अचानक जाके हवाई जहाज चलाने के लिए नहीं बैठ सकता है ना, जिसको तोप चलाना है उसको तोप ही चलाना है, जिसको कोई दूसरा कार्य करना है उसको वही कार्य करना है। तो वैसे मनुष्यों से भी ज़्यादा पशुओं के समाज में, कीड़ों के समाज में, भंवरों के समाज में एक व्यवस्थापन रहता है, परंतु मनुष्यों से अधिक जो जानवर आदि होते हैं वो व्यवस्थापन का पालन करते हैं। जो जानवर, कीड़े, मक्खी और पंछी आदि होते हैं वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार ही सब चलते हैं। जैसे प्रकृति ने उनको बनाया है वैसे ही वो करते हैं, जैसे उनके प्रकृति द्वारा प्रदत्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अतिरिक्त किसी और चीज को नहीं खाते हैं। जैसे हाथी होते हैं, हाथी शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं? शाकाहारी। कभी ऐसे सुना आपने कि हाथी किसी दूसरे जानवर को खा रहा है? कभी नहीं। लेकिन ऐसे आपने सुना कि मनुष्य किसी दूसरे प्राणी को खा रहा है? खूब सुना है ना? तो जानबूझ के यहाँ पर भी आके गोली मार के सुअर को मार के खाते हैं। ये मनुष्य का काम है क्या? नहीं। तो जो जानवर होते हैं वो अपने अपने बतलाए हुए प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, उनका पालन करते हैं। मनुष्यों के लिए भी ऐसे व्यवस्था है, परंतु अधिकतर मनुष्य जो हैं उनका पालन नहीं करते। अभी देश में कितने कानून बनाए हुए हैं सरकार ने, सबका पालन करते हैं क्या लोग? अभी गाड़ी इस गति से तेज नहीं चलानी चाहिए, सब लोग पालन करते हैं? जो भी आय होता है उसके लिए इतना कर देना पड़ता है, आयकर तो सब लोग देते हैं, छुपाते हैं सरकार से, हमने कितना कमाया, काला धन, सफेद धन, कितना सब होता है, तो कितना सब गोलमाल करते हैं लोग, क्यों? नियम से छूटने के लिए। तो जिस तरह से सरकार कोई नियम बनाती है तो उसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए भी नियम बनाए हैं भगवान ने, उसको धर्म कहते हैं। रित, रित मतलब रित, ये शब्द आपने सुना है? रित, रित मतलब वो जिन तत्वों के ऊपर या जिन सिद्धांतों के ऊपर, जिन नियमों के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है उसको रित कहते हैं। और जब ये सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले जो नियम हैं, जब उनको मनुष्य समाज में लागू किया जाता है तो उसको धर्म कहते हैं। तो रित जो है संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। जिस तरह से सारे ग्रह नक्षत्र आदि चलते हैं, कैसे सब कुछ होता है, चीज़ों का उत्पादन कैसे होता है, और उन सिद्धांतों के अनुसार जब मनुष्य समाज में आदेश दिए जाते हैं कि मनुष्यों को कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मनुष्यों का उद्देश्य क्या है, मनुष्य समाज का विभाजन कैसे होना चाहिए, इसको धर्म कहते हैं। वैसे धर्म तो बहुत गहरा शब्द है, उसकी बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है और अनेक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया जा सकता है, परंतु एक साधारण परिभाषा ये है। तो ये धर्म के कई पहलू होते हैं, उनमें से एक है वर्णाश्रम धर्म। विविध प्रकार के धर्म है, उनका कोई आप उल्लेख कर सकते हैं कौन से धर्म है? वर्णाश्रम धर्म तो हमने पढ़ा ही अभी, और धर्म के विविध नाम राजधर्म, पिता धर्म, वो तो वर्णाश्रम धर्म में आ गया। तो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत भी बहुत सारे धर्म, जैसे राजधर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, ठीक है, गृहस्थ आश्रम धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, ये सब वर्णाश्रम धर्म में आ गए। संन्यास धर्म, बहुत सारे धर्म आ जाते हैं, परंतु मूलतः ये वर्णाश्रम धर्म मनुष्य समाज के लिए भगवान ने बनाया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो ये चार वर्ण बनाए हैं भगवान ने, उसी तरह से चार आश्रम भी बनाए हैं। ये कोई कृत्रिम कोई आविष्कार नहीं है मनुष्य समाज का। हाँ, इसका अभी विकृत स्वरूप आज दिखाई दे रहा है, इसका विकार हो गया है, परंतु मूल रूप में ये मनुष्य समाज में विद्यमान है। जिसकी बुद्धिमत्ता है, जो बुद्धि से सब कुछ विश्लेषण करता है, जो दार्शनिक है, जो कवि हैं, जो इस तरह से पठन पाठन में लगे हुए होते हैं, उनका स्वभाव ब्राह्मणों का होता है। जो व्यवस्थापन में और जो रक्षण में आदि सब कार्य करते हैं, वो क्षत्रिय स्वभाव के होते हैं। जिसको ज़्यादा व्यापार आदि में ज़्यादा रुचि होती है, वो वैश्य स्वभाव का होता है, और जिसको अन्य कामों में, अन्य वर्णों की सेवा करने में रुचि होती है, वो शूद्र होते हैं। इसमें कोई ऊंच नीच का सवाल नहीं है, केवल अपने अपने वृत्ति के अनुसार सबको कार्य करने चाहिए। अभी ये जन्म के ऊपर आधारित नहीं है, यद्यपि जन्म का महत्व भी है, परंतु मूल विषय है हमारी प्रवृत्ति, ये हमारे गुण, हमारे कर्म। तो इस तरह से मनुष्य का विभाजन हुआ, समाज का विभाजन हुआ है, और जब मनुष्य समाज के इस विभाजन के अनुसार मनुष्य कार्य नहीं करता है, तब उत्पात हो जाता है। जैसे सेना में तोप चलाने वाला व्यक्ति कहेगा, नहीं नहीं मैं तो गाड़ी चलाऊंगा अभी, और फिर सेना जब युद्ध चल रहा है तब देखे तोप चलाने वाला कहाँ गया, नहीं वो गाड़ी चलाने गया तो फिर क्या होगा? उसको प्रशिक्षण मिला होता है तोप चलाने के लिए। कोई भी आदमी जाके तोप नहीं चला सकता है, बराबर है, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता, वो जाके गाड़ी चलाने के लिए बैठ जाए तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उसी तरह से आजकल क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति मनमाने ढंग से जो चाहे वो कार्य करता है, और इसलिए सब उत्पात हो जाता है। तो यदि हम बतलाए भगवान के बतलाए हुए पथ के अनुसार नहीं चलेंगे, तो समाज में संतुलन बिगड़ जाएगा, समाज में सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, मौलिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो मधुमक्खियों के व्यवस्थापन में और मनुष्यों के व्यवस्थापन में अंतर क्या है? एक अंतर ये है कि मधुमक्खी जो है वो व्यवस्थापन का पालन बहुत सख्ती से करते हैं, कड़क पालन करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा उद्देश्य कि मधुमक्खियों के समाज में जो व्यवस्थापन होता है उसका कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य क्या होता है? आहार निद्रा भय मैथुन, बस इतना ही होता है। कैसे हमारा संरक्षण हम करें, कैसे मकरंद लाके हम शहद उत्पादन करें और अपने जीवन को बनाए रखें, और कोई यदि आक्रमण करेगा तो फिर क्या होता है, कितनी कठोरता से वो आक्रमण करते हैं। आप में से कई ब्रह्मचारी भक्त ब्रह्मचारी यात्रा में एक बार गए थे, और उस समय क्या हुआ था, गलती से किसी पेड़ को या किसी जहाँ पे मधुमक्खी रह रहे थे वहाँ धक्का दिया या कुछ, तो मधुमक्खियों को क्या लगा कि ये लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, और आक्रमण करते तो इसलिए डर से उन्होंने क्या किया, पूरा युद्ध घोषित कर दिया, युद्ध में निकल पड़े, सारे ब्रह्मचारियों को काटने लगे, सबका लाल पीला मुंह हो गया। कि नहीं, कई भक्त कितने दिनों तक बीमार पड़े, कितना दर्द सबको इधर उधर हो रहा था, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हमारी जान हमारा सब कुछ खतरे में है, ये लोग आक्रमण कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो प्रतिकार किया उन्होंने। तो वो अपनी रक्षा वो भी कर सकते हैं, हम लोग तोपों से, बंदूकों से, हवाई जहाज से, हम लोग बम से, हम लोग रक्षा करते हैं, वो काट के रक्षा करते हैं अपना। कोई भी व्यक्ति आके कुछ करने जाए वहां पे तो काट देते हैं। तो रक्षा है, भोजन है इत्यादि, ये सभी लोग करते हैं, परंतु हमारे मनुष्य समाज में जो व्यवस्थापन है उसका उद्देश्य है कि अंततः क्रमशः बढ़ते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, ये अंतिम उद्देश्य है व्यवस्थापन का। हर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, सही है ना? जैसे आपको भोजन बनाना है तो भोजन बनाने के लिए कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है क्या? आप में से कितने भक्त रसोई घर में सेवा करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए, या कर चुके हैं सब? अभी जब आपने रसोई घर में जाना है तो कोई सबसे पहले विचार होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, क्या बनाना है, तो ये सब चीजें बनाने के लिए क्या आवश्यक है, वो सारी चीजें उपलब्ध हैं कि नहीं है, और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं है, और फिर उनको रसोई के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए, उनकी क्या काटना चाहिए, क्या कैसे किस रूप में उसको रसोई होनी चाहिए, फिर किस मात्रा में उनका मिश्रण करना चाहिए, तो बहुत सी चीजें हैं। आपको बहुत सारे नियम योजना बनानी पड़ती है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, इस तरह से करना है, नमक कितना डालना है, हाँ मिर्ची भी कितना डालना है, वो भी है, तो कितना क्या डालना है सब। यदि आप सोचे कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, बस जो मन में आए कर दो, तो क्या होगा, फिर उत्पात हो जाएगा, है ना? तो ठीक उसी प्रकार से किसी भी उद्देश्य के लिए कोई व्यवस्थापन चाहिए। अब रसोई घर में उद्देश्य क्या है, हमें स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन बनाना है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई व्यवस्था होती है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना, आत्म साक्षात्कार करना, तो इस उद्देश्य के लिए भी कोई मनुष्य समाज में व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये है वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्यों को अपने अपने प्रवृत्तियों के अनुसार, अपने अपने गुणों के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं और कैसे उनका जीवन यापन होना चाहिए, कैसे रहन सहन होना चाहिए, कैसे बोलचाल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का वर्णन है। तो धीरे 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 से ऐसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते व्यक्ति एक न एक दिन अनेक जन्मों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि शुद्ध भक्त बनना मेरे जीवन का उद्देश्य है। तब वो वर्णाश्रम धर्म के परे आ जाएगा और सीधे भागवत धर्म का पालन करेगा। भागवत धर्म क्या है?
भक्ति का धर्म, श्रवण और कीर्तन,
केवल कृष्ण भक्ति और कुछ नहीं, केवल श्रवण कीर्तन अर्चना सेवा बस, इसको भागवत धर्म कहते हैं। तो अभी ये बताइए, वर्णाश्रम धर्म और भागवत धर्म, भागवत धर्म क्या है? केवल शुद्ध भक्ति और इसके अलावा कुछ नहीं, और दूसरा है वर्णाश्रम धर्म। तो अब ये वर्णाश्रम धर्म और भागवत धर्म में संबंध क्या है और अंतर क्या है, आप में से कौन समझाएंगे संक्षेप में? वर्णाश्रम धर्म क्या है पहले ये बताओ।
वर्णाश्रम धर्म में चार वर्ण कि अपने स्वभाव के अनुसार एक व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने स्वभाव को उपयोग करता है और उसके फल।
आवाज पहुंच रही है? हाँ, थोड़ा जोर से।
अपने स्वभाव के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और उस कार्य, जो भी कार्य करता है उस कार्य के फल को वो भगवान विष्णु को प्रदान करता है, अर्पण करता है। तो इस तरह से वो उसका कार्य दिव्य बनने लगता है धीरे धीरे से, और ऐसे अपने स्वभाव का पालन करते करते वो शुद्ध भी बनता है और अपना हृदय शुद्ध बनाते बनाते फिर एक समय आता है कि वो अपने स्वभाव से ऊपर उठ सकता है।
कितना समय लगता है
वो जितने तीव्रता से?
एक घंटा, एक दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल,
जिस तीव्रता से वो भगवान को अर्पण कर रहा है।
अनेक जन्म लगते हैं, बहुत सारे जन्म लगते हैं। या फिर
तो इन अलग अनेक जन्मों के बाद जब वो अपने स्वभाव से ऊपर उठता है तो फिर वो समझ सकता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। तो फिर आत्मा के स्तर पर आता है, लेकिन फिर भी यदि कोई वैष्णव का उसको संग नहीं मिला तब तो वो भगवान को निराकार ही समझता है। तो फिर निराकार ब्रह्म के ऊपर वो चिंतन करते करते ज्ञानी बनता है, लेकिन जब उसको एक वैष्णव का कृपा प्राप्त होता है तो फिर वो भगवत धर्म में उतरता है, फिर वहाँ से उसका भक्ति का कार्य शुरू होता है।
तो वर्णाश्रम धर्म करते समय भक्ति नहीं करता है?
वर्णाश्रम धर्म करते हुए भक्ति कर सकता है, लेकिन ये दैवी वर्णाश्रम कहलाएगा।
फिर भागवत धर्म क्या है?
भागवत धर्म और दैवी वर्णाश्रम एक ही है।
थोड़ा सा प्राय सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा बस।
वर्णाश्रम धर्म में केवल कृष्ण भक्ति नहीं, मतलब अपने कर्म करते रहता है, मिश्रित कर्म करते रहता है, लेकिन बहुत सारे जन्मों के बाद जानता है कि जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण भक्ति है, शुद्ध भक्त, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना ही जीवन का लक्ष्य है। तो केवल शुद्ध भक्ति करने के लिए जो जो है वही कार्य करता है, तो वो भागवत धर्म हो गया। फिर यहाँ पे उसको अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, इसलिए वर्णाश्रम धर्म हो गया।
ठीक है, लगभग ठीक। हाँ,
वर्णाश्रम धर्म में ज्ञान और कर्म का जो एलिमेंट योगा है वो ज्यादा प्रमाण में रहता है, भक्ति में शून्य हो जाता है, ज्ञान कर्म आदि अना होता है, कुछ भी नहीं रहता ज्ञान और कर्म में, मतलब भक्त बस भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है। बट वर्णाश्रम धर्म में कभी कभी वो ज्ञान के स्तर पे और कभी कभी कर्म के स्तर के ऊपर भी जाता है और भक्ति के स्तर के ऊपर भी रहता है, बट वो जो स्तर है वो फिक्स नहीं रहता है, 24 घंटा बस भक्ति करने का, वो स्तर चेंज होते रहते हैं। तो जब वो स्तर फिक्स हो जाता है भक्ति, तब वो भागवत है।
ठीक है, लेकिन ज्ञान के स्तर पे, कर्म के स्तर पे इसका क्या मतलब?
जैसे भागवत श्रवण करना, अभी भागवत श्रवण एक भक्त जो करेगा, जो शुद्ध भक्त है, वो हमेशा भगवान की लीलाओं में आनंद लेगा। बट एक जब ज्ञानी करेगा तो उसका पर्सपेक्टिव, उसका विजन अलग रहेगा, वो चीजों को समझने का उसका ज्यादा ये रहेगा कि ये चीज क्यों है, ये चीज क्यों है, ये चीज क्यों है, ना कि भगवान की लीलाओं में आनंद लेगा। उसी प्रकार कर्मी का भी ऐसा ही भेद आएगा।
ठीक है, बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है? सबसे पहली बात हमने सुना कि अपने अपने प्रवृत्तियों के अनुसार, अपने अपने विचारधारा, मानसिकता आदि के अनुसार अलग अलग वर्ण, अलग अलग आश्रम बताए गए हैं। चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चार आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, ये पहला लक्षण है। और हर एक के अपने अपने कर्तव्य होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। दूसरी बात, वर्णाश्रम धर्म में बहुत सारे कार्य होते हैं करने के लिए, भौतिक क्षेत्र के कार्य भी होते हैं, और साथ साथ धार्मिक कार्य भी होते हैं। धार्मिक कार्य में वो कोई एकाग्रता नहीं रहती है कि किसकी उपासना करें, सबकी उपासना होती है। भगवान विष्णु की भी होती है, देवी देवताओं की भी होती है, पितरों की भी होती है, अतिथियों की भी होती है। इसलिए फिर पितृपक्ष है, ये है, वो है, तो सबकी उपासना होती है उसमें। कृष्ण की भी होती है, परंतु यह ध्यान यहाँ वहाँ होने के कारण जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, अच्छी तरह से भी कर रहा है, उसके मन में ये स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि केवल कृष्ण ही कृष्ण को प्राप्त हमें करना है। वो कृष्ण भक्ति भी करता है, विष्णु सहस्र नाम बोलेगा, महामंत्र भी बोलेगा, फिर गणेश जी की उपासना भी करेगा, फिर सूर्यदेव की करेगा, पितरों की करेगा, सब कुछ कर देगा, क्योंकि उसको स्पष्ट इतना जानकारी नहीं होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए सब कुछ करता है, किसी बहुत जोर एक चीज पे नहीं रहता है। लेकिन जैसे अंजनानंदन प्रभु ने बताया, शुद्धिकरण होता है क्योंकि शास्त्रों के बताए हुए नियमों के अनुसार चल रहा है, तो ये शुद्धिकरण को बहुत समय लगता है, बहुत अनेक जन्म लगते हैं, बल्कि 100 जन्मों तक लगातार जब कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन बिना कोई चूक किए हुए, बिना कोई गलती किए हुए करता है, तब वो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। और फिर भी वो ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होगा नहीं होगा वो पता नहीं, कोई निश्चितता नहीं है। तो 100 जन्मों तक बिना गलती किए हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने से अधिक क्या मिलता है? ब्रह्मा जी का पद मिलेगा, या इंद्रदेव का पद कभी बीच में किसी को मिल सकता है। तो कृष्ण भक्ति है उसमें, परंतु एक अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे ऐसे नाक पकड़ने के बजाय ऐसे नाक पकड़ना, ऐसे घूम के। तो इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं उनको स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, धार्मिक बनना है हमको, यह पता हो भी इतना जोर नहीं रहता उसके ऊपर। अभी हर्षल प्रभु ने बताया कि कर्म है ज्ञान है, तो इसका क्या मतलब है? कर्म है ज्ञान है, जब हम कहते हैं कि इसमें कर्म का मिश्रण है, इसका मतलब है कि इसमें भौतिक स्वार्थ मिला हुआ है। हम इंद्र तृप्ति चाहते हैं, और इंद्र तृप्ति के लिए हमको धार्मिक मार्ग बताए गए हैं। हमको धन चाहिए तो बैंक में चोरी करने से बजाय हम कर्म कांड का पालन करें कि भाई धन चाहिए तो ये देवी की उपासना करो, अच्छे पति पत्नी चाहिए तो इनकी उपासना करो, रोग से मुक्त होना है तो सूर्य देव की उपासना करो, हाँ। तो ये सारे भौतिक चीजें हैं। तो ये वर्णाश्रम धर्म में ये कर्मकांड पद्धति का काफी भारी मिश्रण है, तो इसको कर्म कहते हैं, कर्म का मिश्रण। और दूसरी बात, जो थोड़े बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं उनमें ज्ञान का मिश्रण है, जैसे अंजनानंद प्रभु ने बताया, फिर वो निराकार आदि उसमें सब सोचने लगते हैं। तो ये कर्म का मिश्रण, ज्ञान का मिश्रण है, और थोड़ा भक्ति भी है साथ में, भगवान की भक्ति भी करते हैं, भगवान के मंदिर में भी जाएंगे, देवताओं के मंदिर में भी जाएंगे, महामंत्र भी बोलेंगे, दूसरे मंत्र भी बोलेंगे, तो इसलिए स्पष्टता नहीं रहती है। तो धीरे 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 से प्रगति कर करके एक दिन ऐसे पहुंचेगा जब वो भगवान के स्तर, भक्ति के स्तर पे पहुंचेगा। कब? जब भक्तों का संग हो। परंतु ऐसे भगवान के बतलाए हुए पथ पे चलने से वो भगवान को प्रसन्न करता है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेन परपुमान विष्णु आराधिते पंथा नान्य तत्तोष कारण। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का रास्ता है क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। तो भगवान ने अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे से जब हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, बहुत जन्मों के बाद यदि हम भाग्यशाली रहे तो वैष्णव का संग मिलेगा, हम भक्त बन जाएंगे। हाँ, तो वर्णाश्रम धर्म, पारंपरिक वर्णाश्रम धर्म ये अधिकृत है, परंतु धीमे गति का रास्ता है। और लक्ष्य कौन सा है वर्णाश्रम धर्म का भी?
विष्णु,
विष्णु, विष्णु आराध्यते पंथा। परंतु इतना स्पष्ट ज्ञान इनको नहीं होता। तो उद्देश्य के स्तर पे है भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? इसमें ये सब वर्ण, ब्राह्मण का कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य सब नहीं। अभी क्या? केवल श्रवण कीर्तन, बस भगवान की भक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। भागवत धर्म का कोई श्लोक? बोलो। क्या मतलब इसका?
यदि वो किसी भी धर्म को यदि अपनाता है और यदि उसमें उसका जो उद्देश्य है यदि वो नहीं मिलता तो सब नहीं।
धर्म स्वनुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय। धर्म स्वनुष्ठिता, यदि वो धर्म का पालन, धर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म, यदि वो वर्णाश्रम धर्म का पालन, जैसे मराठी में बोलते काटेकोरपणे पालन करते, बहुत सख्ती से पालन करता है, परंतु ऐसे वर्णाश्रम धर्म के पालन से उसको वासुदेव कथा, कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो श्रम एव ही केवलम, ये सब व्यर्थ हो गया। तो वासुदेव की कथा में रुचि लेना, भगवान के नाम में रुचि लेना, भगवान की सेवा में रुचि लेना, यह है भागवत धर्म। वो रुचि, स्वाद आना चाहिए। ये जैसे बच्चों को साधारणतः किस चीज में स्वाद होता है? खेलने में। थोड़ा बस टाइम समय दो, खेलने के लिए चले जाते हैं। तो ये एक स्वाभाविक स्वाद होता है, रुचि। जब किसी व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक एक स्वाद या रुचि उत्पन्न होती है कि मुझे भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में बोलना है, उनकी सेवा करनी है, और केवल उसी कार्य में वो लगता है, तो उसको भागवत धर्म कहते हैं। केवला भक्ति, अनन्य भक्ति, इसमें केवल भक्ति और भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं, कोई वर्ण का संबंध नहीं, इसमें कोई आश्रम का संबंध नहीं, सब लोग भक्त बन सकते हैं। तो अभी एक और, वैसे हम जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो मनमाने ढंग से जीते हैं, वो तो पशु तुल्य है, जानवर के समान, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। तो एक और है वर्णाश्रम धर्म और दूसरी ओर है शुद्ध भक्ति का धर्म, भागवत धर्म। हम कहाँ पे हैं? क्या बीच में? बराबर है, सही है, हम बीच में है। इसलिए हमको, हम ये नहीं बोल सकते कि मैं भक्त हूं तो मुझे मेरे संसार के कर्तव्यों का कुछ संबंध नहीं है, मैं कृष्ण भक्त हूं ना तो सब क्या। लेकिन कृष्ण भक्त के स्तर पे नहीं है ना, क्या हम वो केवल भक्ति के स्तर पे हैं क्या? नहीं। दूसरी ओर हम ये नहीं बोल सकते कि हम केवल यही करेंगे, वरना अपने संसार के कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म ये वो सब करेंगे और भक्ति पे ध्यान नहीं देंगे, वो भी ठीक नहीं। तो जब साधारण व्यक्ति को शुद्ध भक्ति का उद्देश्य को जल्दी से प्राप्त करना होता है तो अनेक सैकड़ों जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म करते रहने से बजाय उन्होंने एक दैव वर्णाश्रम पद्धति बनाई है। जैसे सीढ़ियों पे जाने के बजाय ऊपर लिफ्ट में जाओ, बटन दबाओ, पहुंच जाओ ऊपर। थोड़ा समय लगता है, 20वें मंजिल पे पहुंचना है, लिफ्ट में भी गए तो समय तो लगेगा ना, तो लगता है, परंतु सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते 20 मंजिल पहुंचने से बहुत जल्दी हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये है दैव वर्णाश्रम धर्म। दैव वर्णाश्रम धर्म की विशेषताएं क्या है? पहली बात, जीवन के उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होना, ठीक है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये बस एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य है, अच्छी तरह से पता है। दूसरी बात, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यक है वो बड़े हृदय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन करने का प्रयास करना। तो जब हमें ये स्पष्ट ज्ञान होता है और तीव्र प्रयास भी होता है, परंतु हम उस स्तर पर स्थित नहीं है, तो हमें कोई सहायता की आवश्यकता है, वो सहायता है वर्णाश्रम धर्म, परंतु संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म नहीं। वर्णाश्रम धर्म से हम उन नियमों को, उन विधि निषेधों को लेते हैं जो कि हमारे भक्ति के प्राप्ति के लिए अनुकूल हैं। जैसे यदि हमारा पैर टूट गया है और हमको चलना है, चल सकते हैं, परंतु हम कुछ सहारा लेके चलते हैं, कंधों के नीचे फिर वो कुछ लाठी वगैरह लेके फिर हम आगे चलते हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति चल सकता है, उस गति से हम नहीं चल सकते, परंतु चल तो सकते हैं ना, थोड़ा तो चल सकते हैं, हम बिस्तर पे लेट के नहीं रहते, चलते हैं। तो वो हमारी दशा है, शुद्ध भक्त की तरह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन अभक्त की तरह भी नहीं है, और शुद्ध भक्ति की ओर जा रहे हैं, तो जिसका सहारा ले रहे हैं वो वर्णाश्रम धर्म। परंतु अनेक ऐसे चीजें वर्णाश्रम, साधारण वर्णाश्रम धर्म में हैं जिनका पालन हम नहीं करते, जैसे देवी देवताओं की पूजा, कर्म कांड, पितरों की पूजा, बहुत सी चीजें हैं साधारण वर्णाश्रम धर्म में जो कि हम दैव वर्णाश्रम धर्म में नहीं करते हैं। तो इसलिए दैव वर्णाश्रम क्या है? भागवत धर्म ही है जिसमें हम लोग वर्णाश्रम धर्म के कई चीजों को स्वीकार करते हैं ताकि हमारी सहायता हो, हमारे एक सहारा मिले हमको, क्योंकि हम उस स्तर में नहीं है, तो यहाँ हम हैं तो इस स्तर में बैठ के सुरक्षित अवस्था में रह के हम धीरे 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 इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं सर? हाँ, तो ये है दैव वर्णाश्रम धर्म, दोनों का मिश्रण है। मिश्रण इस दृष्टि से कि उद्देश्य भागवत धर्म का है, मुख्य कार्य भी भागवत धर्म के हैं, परंतु सहारा वर्णाश्रम धर्म का लेते हैं। तो इसके लिए एक साधारण मैं उदाहरण देता हूं। अभी थोड़े भक्त गृहस्थ होते हैं, थोड़े भक्त ब्रह्मचारी होते हैं, ठीक है? तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों के कर्तव्य अलग अलग होते हैं। बच्चों का देखभाल करना, कुछ जीविका का साधन है उसका कुछ करना, पैसे कमाना, बच्चों को पढ़ाना करना, और थोड़ी बहुत इंद्र तृप्ति की छूट भी होती है, थोड़ी स्वतंत्रता भी होती है। परंतु उद्देश्य क्या होता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, इसलिए मुझे जप भी करना है, कीर्तन भी करना है, भगवान की सेवा करनी है, भागवत श्रवण करना है। दूसरी ओर जैसे जो ब्रह्मचारी हैं, जो आश्रम में रहते हैं, उनको भी अपने वर्णाश्रम धर्म का नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्म का आचरण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, स्त्री संग नहीं करता है, ये ब्रह्मचारी वर्णाश्रम धर्म के नियम का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो जप, कीर्तन, सेवा, श्रवण, अध्ययन सब रहता है। तो चाहे जो भी आश्रम हो, जो भी वर्ण हो, ऐसे कोई कार्य होते हैं दैव वर्णाश्रम में जो सबके लिए समान होते हैं। कौन से हैं ये कार्य? श्रवण, कीर्तन, अध्ययन, अर्चा विग्रह की सेवा, भगवान की विविध प्रकार से सेवा करना, चाहे कोई भी आश्रम हो, कोई भी वर्ण हो, ये कार्य सबके लिए एक समान। स्वधर्म अध्यात्म, स्व मतलब आत्मा, तो आत्मा, हम सब आत्मा हैं, इसलिए आत्मा के स्तर के कार्य हैं ये भागवत धर्म, श्रवण, कीर्तन, अध्ययन इत्यादि। और स्व का और एक अर्थ होता है शरीर। तो जो शरीर के स्तर के कार्य है वो है वर्णाश्रम धर्म, कोई ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो हमें दोनों प्रकार के स्वधर्म करने चाहिए। तो ये दोनों प्रकार के स्वधर्म का एक बहुत ही संतुलित और उत्कृष्ट रूप से संयोग या मिलन है दैव वर्णाश्रम धर्म। तो इसलिए ब्रह्मचारी गृह सब जप करेंगे, कीर्तन करेंगे इत्यादि, परंतु उनके संसार के कर्तव्य अलग अलग होते हैं, अंतिम उद्देश्य सबका एक ही है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ठीक है? तो इस तरह से यह वर्णाश्रम धर्म है, भागवत धर्म या शुद्ध भक्ति का धर्म, वैष्णव धर्म बोल सकते हैं इसको, ठीक है? वर्णाश्रम धर्म, वैष्णव धर्म और दैव वर्णाश्रम धर्म। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, इन्होंने हम सबको सिखलाया है कि ये दैव वर्णाश्रम का पालन करके हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं, ठीक है? तो ये मनुष्य जीवन के लिए अब चाहिए। अब कलयुग में ये साधारण वैष्णव धर्म संभव नहीं है, इसलिए दैव वर्णाश्रम धर्म ही आवश्यक है। स्पष्ट हुआ सब कुछ सरल भाषा में?
महाराज, ये श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में जो भी वर्णाश्रम के बारे में वर्णन किया जाता है तो वो दैव वर्णाश्रम ही है?
साधारणतः दोनों पाए जाते हैं। कभी कभी भागवत में देखोगे तो साधारण वर्णाश्रम का वर्णन होता है, हमको देवताओं की पूजा करनी चाहिए, पितरों की उपासना करनी चाहिए, सब चीजों, कर्मकांड का भी वर्णन है, वो साधारण वर्णाश्रम। फिर कभी कभी दैव वर्णाश्रम का है, कभी कभी वैष्णव धर्म।
उद्देश्य बताने का?
वैष्णव धर्म, शुद्ध भक्ति।
साधारण वर्णाश्रम का भी जब वर्णन होता है 18वें अध्याय में है,
ये सब क्यों बताए गए हैं? क्योंकि एक मनुष्य समाज के लिए व्यवस्थापन कैसे भगवान ने की है वो बताने के लिए, और जो लोग ये नहीं कर सकते कम से कम ये तो करना चाहिए। इसके नीचे फिर वो पशु, वो जानवर कहलाता है जो कोई भी नियम का पालन नहीं करता है।
दैव वर्णाश्रम के प्रिंसिपल्स फिर षड गोस्वामी के ग्रंथों में मिलेंगे, क्योंकि
ये
अलग से तो
भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनको समझा के ये सब बताया। उनके पहले जो हमारे आचार्यगण थे, चाहे वो षड गोस्वामी प्रभु हों, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये क्या पालन कर रहे थे? भागवत धर्म। दैव वर्णाश्रम ने उनके लिए वर्णाश्रम का क्या मतलब, वो तो बाबा जी की अवस्था में थे, परम अवस्था में थे। सन्यास भी वर्णाश्रम में ही आता है, तो उस समय सन्यास नहीं था। महाप्रभु ने सन्यास लिया और महाप्रभु के थोड़े पार्षदों ने सन्यास लिया, उसके बाद किसी ने सन्यास नहीं लिया, वो बाबा जी अवस्था में थे। बाबा जी अर्थात अभी सन्यास के भी परे पहुंच गए, अभी वो केवल आध्यात्मिक स्तर में है।
लेकिन उनके ग्रंथ जब पढ़ते हैं, जैसे षटक्रिया, सार दीपिका या फिर सनातन गोस्वामी के, तो ये सब वर्णाश्रम, दैवी वर्णाश्रम,
ये षड गोस्वामियों ने ये मनुष्य समाज के लिए लिखे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कि एक आचार संहिता बनानी चाहिए कि मनुष्य समाज में कैसे रहना चाहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये सब हरिभक्ति विलास और शतक्रिया सार दीपिका ऐसे ग्रंथों की रचना करने का उद्देश्य क्या था? एक आचार संहिता बनाए,
जो वर्णाश्रम में है और वैष्णव भी
है, हाँ दोनों कर सकते हैं। तो उनका उद्देश्य था कि जो वैष्णव नहीं है वो भी धीरे धीरे से करेंगे तो इस रास्ते में जुड़ जाएंगे, और जो वैष्णव पहले से हैं परंतु जिनको संसार में कर्तव्य होते हैं उनके लिए उन्होंने पद्धतियां बताई, परंतु खास करके जोर वैष्णव दृष्टिकोण से है कैसे करना चाहिए, चाहे वो जन्म दशविध संस्कार हो कैसे करने चाहिए उनका, तो दोनों दृष्टि से बताया है उधर। हाँ ये साधारण वर्णाश्रम का है, अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने आश्रम के अनुसार सबको अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए, परंतु ये सिद्धांत दैवी वर्णाश्रम में भी आता है। सिद्धांत जो है ना, कि अपने अपने स्तर में, हम लोग अभी ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, जो भी है, हमको अपना कर्तव्य होता है कि नहीं? ब्रह्मचारी को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन भक्त है वो ब्रह्मचारी, साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, तो भक्त का भी कर्तव्य करना चाहिए, जप करना, कीर्तन करना, ठीक है? हाँ, जब तक वो रुचि स्वाद नहीं आएगा तब तक इनका पालन करना चाहिए। जब रुचि आएगी तब हम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की तरह बन जाएंगे, और बने भी तो अन्यों को आदेश देने के लिए हमें रहना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी संन्यास वेश ही पहना। हाँ उद्धव हरि प्रभु, थोड़ा जोर से, कंफ्यूजन क्या आता है?
साधारण ये मैं हमारे जो सामाजिक नियम है उसको कभी पालन करना पड़ता है, फिर कभी कभी ये भी आता है कि कहा जाता है कि नहीं भागवत विधि का जो है जैसे जब को ये सब को ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर बात को देखना है, फिर कुछ दोस्त है ग्रह दोस्त वो सब ये करना है, ये सब आ जाता है। फिर एक
हाँ
स्टेज में कैसे
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्णाश्रम धर्म का कितना हमको ले लेना चाहिए हमारे दैव वर्णाश्रम में। इसमें कभी कभी भक्तों में कम ज़्यादा होता है, वाद होता है, कोई ज़्यादा कठोर होते हैं, बोलते हैं पूरा लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। फिर कोई भक्त बोलते नहीं, हम लोग वैष्णव है, इतना सब नहीं लेना चाहिए, इतना ही लेना चाहिए। इस तरह से थोड़ा मतभेद होता है भक्तों के बीच में। तो हम बोलते हैं प्रभुपाद जी ने जैसे बताया वैसे चलना चाहिए, परंतु भक्तों में ये भी वाद होता है कि प्रभुपाद ने ऐसे भी बताया, प्रभुपाद ने वैसे भी बताया, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो संतुलन होना चाहिए। है तो अंतिम प्रश्न। हाँ हर्षद, ये सब देखो, ये सब वैदिक विज्ञान है ना, तो प्रभुपाद ने इनको ठुकराया नहीं, ये नहीं कहा कि ये अधिकृत नहीं है। प्रभुपाद भी कभी कभी बोलते थे, और थोड़ी दिन पहले मैं प्रवचन सुन रहा था प्रभुपाद जी का, वो बोलते थे कि आजकल जो लोग विवाह करते हैं केवल पसंद के ऊपर करते हैं, लड़का को लड़की पसंद आई, लड़की को लड़का पसंद आया, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत है, तथाकथित प्रेम हो जाता है, शादी कर लेते हैं। और कभी प्रभुपाद बोलते हैं, फिर वो कभी सोचते नहीं, कभी पत्रिका मिलानी चाहिए, क्या उनका भविष्य कैसे होगा, आगे चल के साथ में वो अच्छी तरह से रह पाएंगे कि नहीं, ये सब सोचते ही नहीं है, बस पसंद आया, सौंदर्य है, ये है, ले लेते, शादी कर लेते। इसका मतलब है प्रभुपाद जी भी मानते हैं कि ये सब चीज़ें करना आवश्यक है, परंतु ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए हम ज्योतिष का इस्तेमाल करें। अभी दो चपाती खाने की तीन चपाती चलो हमको कब करना है, क्या करना है, मतलब हम फिर ज्योतिष भावनामृत हो जाएंगे, कृष्ण भावनामृत की जगह है। ये वास्तु ज्योतिष इनका उपयोग करना चाहिए, परंतु कितना उपयोग करना, कहाँ कहाँ करना, ये एक संतुलन होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि उनको पूरी तरह से ठुकरा दें, और ऐसे भी नहीं हो कि हम इतना इनको स्वीकार करें कि दिन रात यही चिंतन करते रहें ज्योतिष के बारे में। कोई भक्त भी होते हैं इतना कहते हैं, जब कोई मीटिंग में जाते हैं, आपका कुर्सी ऐसे होना चाहिए इस दिशा में, फिर आपने आपको फिर वर्चस्व मिलेगा मीटिंग में, आप पहुंच जाएगा तो आप ऐसे खड़े हो जाओ, इस दिशा से आओ आप ऐसे, 24 घंटे ये सब चीज़ें सोच नहीं सकते, है ना। लेकिन जहाँ पे ठीक है, किया जा सकता है, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको ले सकते हैं। जैसे अभी विवाह करना है, कोई दोनों भक्त हैं, अभी विवाह का प्रस्ताव आया है, तो माता पिता देखते हैं, वरिष्ठ भक्त देखते हैं, तब पत्रिका मिलाना ठीक है, मिलाओ, अच्छी बात है, परंतु हर चीज़ के लिए मिलाना आवश्यक नहीं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके लिए ठीक है,
नियमाग्रह, वो नियमाग्रह हो जाए।
हाँ, नियम आग्रह भी नहीं होना चाहिए, नियम अग्रह भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने कौन से तीन चीजें सुनी आज, साधारण वर्णाश्रम धर्म बोलेंगे इसको, ठीक है, साधारण वर्णाश्रम धर्म, फिर भागवत धर्म या वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म बोलते हैं तो और सरल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, वैष्णव धर्म, और तीसरा दैवी वर्णाश्रम धर्म। तो संक्षेप में बताओ तीनों का लक्षण, एक एक दो दो लाइन में।
साधारण वर्णाश्रम धर्म जो होता है उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, तो वर्णाश्रम का पालन तो करते हैं लेकिन कभी गणेश जी की पूजा करेंगे,
वैसे उद्देश्य स्पष्ट होता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है।
हाँ, ये स्पष्ट ये नहीं कि कृष्ण भक्ति भी करनी, और भागवत धर्म में,
परंतु फिर फायदा क्या है करके,
वो शुद्ध होते जाते हैं, अनेक जन्म लगते हैं शुद्ध होते होते, तब जाके वो जब शुद्ध होते हैं और वैष्णव का संग मिलता है तो वो शुद्ध होते तक जा सकते हैं। और भागवत धर्म में उद्देश्य स्पष्ट होता है कि कृष्ण भक्ति ही हमें करनी चाहिए और वर्णाश्रम से परे जाते हैं, साधारण वर्णाश्रम से परे जाते हैं और अनन्य केवल श्रवण के लिए। और इसमें फिर आता है दैव वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम यानी कि वर्णाश्रम का आधार लेते हुए हम भक्ति, शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक कृष्ण कथा में रुचि आती है आने तक हमें वर्णाश्रम धर्म को हम आश्रय लेते हैं और भक्ति करते हैं, उद्देश्य तो वही होता है श्रवण कीर्तन ये सब होता है, किंतु जब उस स्तर को प्राप्त करते हैं फिर भी हमें पालन करना है अन्यों को।
और यदि आज मैं बोलूं अभी मुझे रुचि आ गई है अभी मैं पालन नहीं करूंगा, हो सकता है
नहीं।
फिर क्या होना चाहिए,
अन्यों को आदर्श दिखाने के लिए उनको करते रहना।
पहली बात वास्तव में रुचि आई कि नहीं वो है कि नहीं, और आया भी हो फिर भी अन्यों के लिए करना चाहिए जैसे कि प्रभुपाद जी ने किया। तो दैवी वर्णाश्रम क्या है, वैष्णव धर्म ही है जिसमें थोड़ा सहारा हम लेते हैं वर्णाश्रम धर्म का। तो इससे उद्देश्य स्पष्ट है परंतु हम उस स्तर के नहीं है, इसलिए यहाँ की गतिविधियों का और नियमावली आदि का पालन करते हैं, व्यवस्था का उपयोग करते हैं अपने आप को स्थिर रखने के लिए, ताकि स्थिर होकर हम भक्ति करते 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 प्रगति करें भक्ति में। ठीक है, आए तो ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। गोकुलधाम वासियों की जय।